ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम छठा स्कंध अध्याय 14। अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु का शोक और श्लोक संख्या 35 से 40 तक। ठीक है, तो 40वां श्वेत पट में लिखा हुआ है। इसके पहले के ये श्लोक हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले कथा प्रसंग सबको पता होना चाहिए। तो कितने भक्त लोग हैं जो नियमित रूप से बैठते हैं जिनको कथा प्रसंग पता है? हाथ उठाइए। तो आधे से भी कम लोग जानते हैं। तो कथा प्रसंग ये चल रहा है कि वृत्रासुर का जो चरित्र है, जब महाराज परीक्षित ने सुना तो बहुत चकित हो गए कि असुर योनि में इतना भक्तिभाव कैसे हुआ है ना। इस कारण से सुखदेव गोस्वामी वृत्रासुर के पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं कि पिछले जन्म में ये जो है राजा चित्रकेतु थे और कैसे इनको भक्ति प्राप्त हुई और फिर कैसे इनको साप के कारण असुर बनना पड़ा। किसी भक्त को अगर साप मिल जाए और असुर कभी शरीर मिल जाए तो भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है, उसकी भक्ति के संस्कार इतने प्रबल हैं कि असुर की होने में भी जो है उसकी भक्ति के संस्कार चलते रहते हैं। तो ये जो है इस कथा से हमें ज्ञान मिलता है। तो यहां बताया जा रहा है कि महाराज चित्रकेतु हैं, सूरसेन देश के राजा हैं, यानी मथुरा सूरसेन देश के मतलब मथुरा के ही राजा हैं। और इनके पास सब प्रकार के गुण हैं, सब प्रकार की शक्तियां हैं, बल है, सौंदर्य है, सब कुछ है। और एक करोड़ रानियां हैं, लेकिन बताया गया है कि वो संतान उत्पन्न करने के ही लिए उन्होंने ये एक करोड़ रानियों से विवाह किया था। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब बांझ हैं, किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है ना। तो यहां पर ये बताया जा रहा है 35वां वर्ष कामान्येषां पर्जन्य एव देहिनां धन्यम यशस्यम आयुष्यम कुमारस्य महामनां। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी तरह उदार चेता चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबों को मोह मांगी वस्तुएं दी। तो क्षमा करना, मैं कुछ कथा छोड़ गया हूं। तो फिर क्या हुआ कि अंगिरा मुनि राजा के पास आए और राजा बहुत उदास थे, तो अंगिरा मुनि ने जो है उनको कुछ यज्ञ करके और उसमें चरु पकाया और उनकी जो सबसे बड़ी रानी थी कृत ज्योति उसको प्रदान किया। तो उससे जो है सबसे बड़ी जो रानी थी कृत ज्योति उसको पुत्र प्राप्त हुआ है ना। अब एक बड़ी समस्या पैदा हो गई, अब इसको हम समझेंगे। बड़ी समस्या पैदा हुई कि एक रानी को पुत्र हुआ और बाकी सब रानियों को पुत्र नहीं हुआ, इससे कितनी बड़ी समस्या हुई। तभी यहां पर क्या बताया गया है कि राजा ने जो है मतलब दान की वर्षा कर दी, मोह मांगा दान दे रहे हैं। कैसे मोह मांगा दान दे रहे हैं? जैसे बादल वर्षा करते हैं इस तरह से उन्होंने जो है मोह मांगी वस्तुएं दे रहे हैं। किसको क्या चाहिए बोलो क्या चाहिए यही पूछते हैं और सब कुछ जो है मतलब देते हैं। कृष्णे थे राजर्षेष तने नो दिनम पितु यथा ने स्वस्य कृत छात्रे धने स्नेहोन्मय वर्धत। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। मातस्तुति तराम पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भव कृतय दुते सपत्नी नाम प्रजाता में ज्वरो भव। और पिता की ही भांति मां का भी आकर्षण और स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया। अब इससे पता क्या होता है, ये बहुत बड़ा दोष पैदा हो गया। क्या दोष पैदा हो गया? पक्षपात का। अब एक करोड़ रानियों में से एक रानी को पुत्र प्राप्त हुआ है तो उसका भी जो है पूरा जो केंद्र उसका जो मन केंद्र है पुत्र में, और राजा का भी मन केंद्र है पुत्र में, और बाकी 99 लाख और 99,999 जो रानियां हैं उनकी कोई पूछ नहीं है ना। तो एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो उससे क्या हुआ कि जो अन्य पत्नियां हैं कृत द्युति की 99,99,999 पत्नियों को पुत्र की कामना का ज्वर पैदा हो गया, एक बुखार, पुत्री कामना का एक बुखार पैदा हो गया। चित्रकेतो रति प्रीतिर यथा दारे प्रजावती न तथा नेषु संजज्ञ बालम लालय तो अनुभम। ज्यों ज्यों राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का लाल प्यार करने लगे, क्यों क्यों रानी कृति द्युति के प्रति भी उनका प्रेम प्रकार होता गया। अब एक पत्नी पर प्रेम भी, पुत्र के कारण पत्नी पर भी प्रेम बढ़ता जा रहा है ना। तो जो सौते हैं उनके लिए क्या हो गया, बड़ा कष्ट, बहुत कष्ट हो गया है ना। ये समान व्यवहार करें तो ठीक है, पति समान व्यवहार करें तो ठीक है, भाई किसी को ना पूछे हैं तो चलो ठीक, किसी को नहीं पूछे, एक को पूछ रहा है और अन्यों को बिल्कुल नहीं पूछ रहा है ना। तो क्या हुआ, और पुत्रहीन रानियों के प्रति उनका प्रेम क्रमशः घटता रहा। अब वो देखते भी हैं तो ऐसे, दूसरी पत्नियों को देखते भी तो ऐसे करते हैं ना। तो क्या है, तिरस्कार है ना। तो ये जो है एक बहुत बड़ा दोष है, पति का बहुत बड़ा दोष है, है? आगे तापर्य तप्यन्नात्मानं गर्हयन्त्योभ्य सूययाम आनपत्येन दुःखेन राग्यश्चानादरेण च। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थी, अप्रसन्न मतलब दुखी, अपने प्रति राजा की अपेक्षा से वे गायवत अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगी। अपने को धिक्कारती हैं, पश्चाताप करती हैं, अपने को धिक्कारती हैं। तो ये विधि है, मतलब राजा का दोष देखने के बजाय ज्यादा अच्छा क्या है कि अपना दोष देखा जाए, है ना। तो ये एक शिष्टाचार है ना। तो आजकल तो उल्टा होता है, हमेशा जो है मतलब दूसरों के दोष निकालना है, लेकिन यहां पर क्या है, वो अपने को धिक्कार रहे हैं, अपनी निंदा कर रहे हैं, है ना। क्या हमारा दोष क्या है कि हमें पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो आज का श्लोक है, आप लोग मेरी पूछ पढ़िए। धिग प्रजाम स्त्रियम, धिग प्रजाम स्त्रियम पापाम पत्युश्चाग्रह सम्मताम सुप्रजा भी सपत्नी भी दासी में वह तिरस्कृताम धिग प्रजा स्त्रियम पापाम पत्युश्चाग्रह सम्मताम सुप्रजा भी सपत्नी भी दासी में वह तिरस्कृताम। बोलिए, शब्दार्थ बोलिए, धिक धिक्कार है, अप्रजाम पुत्रहीना स्त्रियम स्त्री को पापाम पाप कर्मों से पूर्ण पत्यु पति के द्वारा च भी अग्रह सम्मताम जिसका घर में अनादर हो अनादृत सुप्रजा भी पुत्रवती सपत्नी भी सौतों के द्वारा दासी नौकरानी इव के समान तिरस्कृता तिरस्कृत अनादृत। अनुवाद मेरे पीछे बोली, जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वो घर में दासी के समान अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा अनादृत होती है, निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कार के योग्य है। तो समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम इस श्लोक के शब्दों को और समझेंगे। धिक अप्रजाम, धिक माने धिक्कार है, अप्रजाम ऐसी स्त्री को धिक्कार है जो अप्रजा है। अप्रजा माने जिसकी कोई पुत्र नहीं है, जिसकी कोई प्रजा नहीं है, पुत्र नहीं है। स्त्रियम, ऐसी स्त्री जिसकी कोई पुत्र नहीं है, अप्रजाम स्त्रियम धिक, धिक्कार है। धिक धिक बोलते हैं, धिक धिक्कार है। पत्युश्चाग्रह सम्मताम पापाम, पापा माने पापनी, मतलब उसके पिछले जन्म के कुछ ऐसे पाप हुए हैं कि उसको पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये विधि है, अपना अपनी निंदा करने की विधि है। ऐसे कहेंगे भाई मेरे मेरा इसमें क्या मेरा दोष है, लेकिन दोष क्या है, मेरे पिछले जन्मों का कुछ दोष है कि मुझे संतान नहीं उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से अपनी निंदा करने की ये विधि इस शिष्टाचार कहलाती है, शिष्टाचार है ना। तो ये जो स्त्रियां हैं ये बहुत शिष्टाचार सीखी हुई हैं, इसलिए इस पति की निंदा करने के बजाय, राजा भी है, पति भी है, राजा भी है, राजा की निंदा, पति की निंदा, और गुरु भी है, पति गुरु भी होता है, तो गुरु की निंदा, यहाँ गुरु की भी निंदा होगी, राजा की भी निंदा होगी, पति की भी निंदा होगी। तो पति गुरु राजा की निंदा से बचने के लिए अपनी निंदा कर रही हैं। शोक तो उनको है, बहुत दुख हो रहा है, तिरस्कार जो प्राप्त हो रहा है, तो पति से प्राप्त हो रहा है तिरस्कार, लेकिन पति की निंदा नहीं कर रही है। धिक प्रजाम स्त्रियम पापाम पत्युश्चाग्रह सम्मताम, और पति के द्वारा भी क्या है वो अग्रह सम्मताम, मतलब घर में असम्मताम यानी असम्मानित हैं, घर में वो असम्मानित हैं। और अग्रह सम्मताम का दूसरा मतलब यह है, अग्रह का मतलब है जंगल, कि पति के द्वारा उनको सम्मति प्राप्त हुई है जंगल में जाने की, अग्रह सम्मताम। अगर ग्रह के साथ लगा दिया जाए तो क्या हो गया, अग्रह यानी ग्रह नहीं यानी जंगल, और सम्मता माने सम्मत, पति के द्वारा उनको सम्मति प्राप्त हुई है क्या कि तुम लोग वन में जाओ, अग्रह सम्मताम है ना। पत्यु अग्रह असम्मताम, तो घर में उनका जो है सम्मान नहीं होता पति के द्वारा, ये भी एक मतलब है। दूसरा मतलब यह है कि पत्यु चा अग्रह सम्मताम, कि पति के द्वारा उनको सम्मति प्राप्त हुई है कि अग्रह में रहें, ग्रह में ना रहें, अग्रह में रहें, वन में रहें, अग्रह सम्मताम। सुप्रजा भी सपत्नी जी, और जो पत्नियां अपनी सपत्नियां हैं जिनकी मतलब सोते हैं अपनी जिनकी अच्छी संतानें हैं, उनके द्वारा दासी में भी तिरस्कृताम, वो दासी के समान तिरस्कार पाती हैं। मतलब पति की दासी तो होती है, इस पत्नी जो है पति की तो दासी है, तो पति अगर अपनी पत्नी को दासी के समान व्यवहार करे तो दासी तो है, लेकिन अपनी सौतों की दासी, और सौत भी जो है दासी के समान तिरस्कार करती है, तो ये जो है बड़े धिक्कार की बात है। इस प्रकार से जो 99,99,999 स्त्रियां शोक कर रही हैं, अपने को धिक्कार रही हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की। जैसा कि चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता ना हो, जिसकी पत्नी मधुर भाषिणी ना हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर तथा जंगल में रहना एक समान है। माता घर में नहीं है, माता के अंदर तो स्वाभाविक स्नेह होता है बच्चे के लिए, कि वो पूछती है बेटा तूने खाया कि नहीं खाया, खा ले 10 बार पूछती है, लेकिन माता है ही नहीं। और पत्नी कैसी है, अप्रिय बात नहीं है ना, पूछती तक नहीं, खाने के लिए नहीं पूछती है, और जैसे ही घर में आए तो कुछ ना कुछ और अपनी लिस्ट देती है, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, तो वो जो है अप्रिय वादिनी है। पत्युष्ट भार्या च अप्रिय वादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम, उसके लिए गंतव्यम जाना चाहिए, अरण्यम जंगल में क्यों? यथा अरण्यम तथा गृहम, क्योंकि जैसा जंगल वैसा घर। रूपा जी ने चाणक्य पंडित का श्लोक दोहराया है। ये क्यों दोहराया है श्लोक? यहां तो मतलब दूसरा उदाहरण है, लेकिन बात जो सोते हैं रानी कृत द्युति की, जो सोते हैं तो वो भी मतलब सोचते हैं कि हमें जो है पति जंगल में भेजना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो है ये घर भी जंगल के समान हो गया है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार जिस स्त्री के पुत्र ना हो, जिस स्त्री के पुत्र ना हो और जिसका पति परवाह ना करता हो, तथा जिसकी सोते हैं उसके साथ नौकरानी का सा व्यवहार करके उसकी उपेक्षा करती हो, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में रहना श्रेयस्कर है ना। लेकिन स्त्री तो जंगल में नहीं जा सकती, स्त्री के लिए तो ये उचित नहीं है कि वो अपने पति को छोड़ के जंगल में जाए, लेकिन वो घर ही उसका क्या हो गया है, जंगल बन गया है ना। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम इस विषय में चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि कलयुग में निषिद्ध है एक से अधिक पत्नी रखना, निषिद्ध है। वैसे स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया कि एक पत्नी से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया कलयुग में, लेकिन समस्या होती है बहुत, क्योंकि कली का मतलब है कलह, तो ये कलह स्वाभाविक रूप से कलह पैदा करता है कली, है ना। और कलयुग में चूंकि लोगों के शरीर में ज्यादा रजोगुण है, ज्यादा तमोगुण है, ज्यादा तमोगुण है, तो स्त्रियों के शरीर की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, सहवास की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसके लिए पति के लिए बहुत मुश्किल है कि एक से ज्यादा पत्नियों को संतुष्ट करे, क्योंकि उससे सहवास के कारण उसकी शक्ति जो है क्षीण हो जाएगी, तो ये भी कारण है। लेकिन ये कलयुग का समय नहीं है, जिस समय राजा चित्रकेतु हैं तो 1 करोड़ रानियां हैं, तो जरूरी थोड़ी कि वो सबके साथ सहवास करेंगे, लेकिन जो है राजा को अधिकार होता है कि वे जो है हजारों पत्नियों को रख सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आवश्यकता होती है सुरक्षा की। तो राजा के महल में जिस प्रकार की सुरक्षा मिलती है स्त्रियों को, वो सुरक्षा और दूसरे के यहाँ नहीं मिलती। राजा की ओर से सब प्रकार के जो है खर्चे, है ना, भोजन, रहने की व्यवस्था और शरीर की सुरक्षा, सब प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था जो है राजा के महल में होती है। तो इसलिए 1 करोड़ रानियां राजा चित्रकेतु की थीं, इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, आप समझे। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो है हर पत्नी के साथ वो कैसे शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि शारीरिक संबंध स्थापित करना, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है कि उनके शरीर की सुरक्षा करना, उनके चरित्र की सुरक्षा करना, तो ये राजा का कर्तव्य है। और राजा गुरु का भी कार्य करता है, तो गुरु का भी कार्य का आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है, तो राजा की भी मतलब ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी जो पत्नियां हैं वो भगवान के धाम में पहुंचे। तो राजा का जो है मतलब ये सब उत्तरदायित्व होता है कि मतलब पति नहीं बनना चाहिए किसी का, पिता नहीं बनना चाहिए, किसी की माता नहीं बनना चाहिए, किसी का गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर आप उसको मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते, आप समझे ना। तो महाराज चित्रकेतु इस मामले में बिल्कुल आदर्श पति थे कि 1 करोड़ पत्नियों को उन्होंने जो है रखा हुआ था और उनको विधिवत शिक्षा प्रदान करते थे, आप समझ रहे हैं। तो ये जो है जिम्मेदारी है, तो ये प्रश्न नहीं मतलब उठाया जाना चाहिए कि 1 करोड़ पत्नियां रखने का क्या मतलब है, ये उचित नहीं है। 1 करोड़ पत्नियां क्यों रखें, उनकी काम वासना को तो संतुष्ट नहीं कर सकते, काम वासना को संतुष्ट नहीं कर सकते जितनी पत्नियां क्यों रखें। तो काम वासना की बात नहीं है, ये जो है कलयुग का समय नहीं है, यहाँ की काम वासना का इतना मतलब वो होता है, असर होता है कि वो जो है रह नहीं सकती स्त्री, रह नहीं सकती, तो ये चीजें नहीं है। और यहाँ पर जो है वो जो विचार कर रही हैं, उस प्रकार से विचार कर रही हैं जिसमें कोई दोष ना लगे, कोई अपराध ना लगे, इस प्रकार से वो विचार कर रही है ना। तो लेकिन भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में थे, आप सुन रहे, भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में थे तो उन्होंने क्या करके दिखलाया, 16,100 पत्नियां, 16,100 कितनी, 16,108 पत्नियां है ना। उनके जितने महल उतनी रानियां, उनके उतने ही दासी दास सब कुछ है ना, और उतने ही कृष्ण भी, प्रत्येक पत्नी के साथ कृष्ण, आप सुन रहे, प्रत्येक पत्नी के साथ कृष्ण। और कैसे रहते हैं कि पूरा सम्मान मिलता है, प्रत्येक पत्नी को सम्मान मिलता है, आप सुन रहे हैं। तो यहां पर तो पत्नियों का तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि एक राजा है, एक ही व्यक्ति है, तो अपना जो सम्मान है वो कहां तक जो है वो केंद्रित करेगा, मतलब फैलाएगा। अगर पुत्र में उसका स्नेह केंद्रित हो गया तो फिर वो जो है सब जगह अपने सम्मान को या अपने स्नेह को वो नहीं फैला सकता, जीव है ना। लेकिन भगवान, भगवान कैसे हैं है? जितनी पत्नियां उतने कृष्ण हैं, और 24 घंटे रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, 24 घंटे नहीं, जिस समय सभा में जाना होता है सवेरे है तो निकल जाते हैं सभा से है, और पत्नियों से आज्ञा लेते हैं, अपनी पत्नियों से आज्ञा लेते हैं सभा में जाने की है, और फिर जब आते हैं है, तो फिर जो है एक कृष्ण के 16,108 कृष्ण हो जाते हैं है? 16,108 कृष्ण जो है हर महल में जाते हैं है? और जब निकलते हैं सवेरे तो एक 16,108 कृष्ण निकलते हैं, और जब रथ में बैठते हैं दारुक इंतजार करता है, रथ में भगवान का, तो 16,108 कृष्ण क्या हो जाते हैं, एक कृष्ण हो जाते हैं और जाते हैं। इस प्रकार से उनकी जो पत्नियां हैं, हर पत्नी ये सोचती है कि भगवान जो है मेरे साथ हैं और मैं कितनी सम्मानित हूं। यहां पर जो उल्टा सोच रहे हैं कि हम कितनी अपमानित हो रही हैं, वो सोचते हैं हम कितनी सम्मानित हो रही हैं। उसमें भी दोष होता है, उसमें भी दोष होता है। क्या दोष होता है कि जब हर पत्नी सोचती है कि मैं इतनी सम्मानित हूं, तो हर पत्नी को फिर वो होता है, गर्व होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा गर्व होगा। तो भगवान फिर गर्व ही दूर करते हैं, प्रत्येक पत्नी का गर्व दूर करते हैं भगवान। जैसे रुक्मिणी का गर्व है तो श्रीमद् भागवत में कथा है, और बहुत विस्तृत कथा है कि रुक्मिणी को कुछ गर्व हुआ, क्या गर्व हुआ, भगवान जो है सैया में लेटे हुए हैं और रुक्मिणी जी जो है चमर डुला रही हैं और सोच रही है मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, है ना। हर पत्नी सोचती है। तो रुक्मिणी का एक जो है उदाहरण देकर के मतलब श्रीमद् भागवत ये संकेत करती कि भगवान की जिम्मेदारी की प्रत्येक पत्नी का गर्व दूर करते रहे, है ना। रुक्मिणी का गर्व दूर करने के लिए भगवान ने क्या विधि अपनाई, ये तरीका नहीं है कि तिरस्कार किया जाए, सम्मान के साथ गर्व दूर किया, ये भी भगवान ने सिखाया कि पत्नी का सम्मान के साथ ही जो है गर्व दूर करना है ना। और सम्मान किया भगवान ने रुक्मिणी का, क्या सम्मान किया कि तुम इतने सुंदरता में, गुणों में, शिक्षा में, बुद्धि में इतने आगे हो, बहुत आगे हो, लेकिन फिर तुमने एक गलती कैसे कर दी, तुम मेरा चुनाव कर लिया, मैं जो है तुम्हारे समान तो हो नहीं ना किसी प्रकार से, ना धन संपत्ति में, ना सुंदरता में, किसी में भी नहीं हूं, है ना। और हम लोग तो जो है राजाओं से डर करके समुद्र में छिपे हुए हैं, समुद्र की शरण ली हुई है, और सब राजा लोग जो है हमारे शत्रु बने हुए हैं, तो तुमने जो है मतलब एक सब गुण होने के बावजूद भी तुम्हारा एक दोष ये है क्या कि मेरा चुनाव किया तुमने, जीवन में एक गलती जो की है वो क्या की है, क्या की, बोलो बोलो है? कि मेरा चुनाव किया, तुमने मुझे जो संदेश भेजा, गुप्त संदेश भेजा कि मैं तुम्हारा अपहरण करूं, है ना। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं स्त्रियों में, बच्चों में मेरा तो कोई प्रेम है नहीं है, तो फिर मैंने उन राजाओं को जो है उन राजाओं का गर्व दूर करने की मैंने तुम्हारा अपहरण किया था, है? लेकिन मैं जो है उतना योग्य नहीं हूं तुम्हारे, और अभी भी समय है भगवान कहते हैं अभी भी समय है। क्या समय है? कि तुम जा सकती हो, मतलब तलाक, जबकि जबकि वेदों में तलाक शब्द आता ही नहीं कहीं, लेकिन तलाक दे सकती हो, मेरी ओर से स्वीकृति है। और तुम्हारे सेवा करने वाले बहुत से राजा हैं, वो बहुत कामी हैं, हैं? वो तुम्हारी कामना करते हैं, वो तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, हैं? तुम अभी भी जा सकती हो। तो सम्मान के साथ है तिरस्कार किया रुक्मिणी का। रुक्मिणी जी ने असली बात समझ ली कि ये मेरा त्याग करना चाहते हैं, मेरे अंदर कुछ उन्होंने दोष देख लिया है कि मेरा त्याग करना चाहते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले हाथ से पंखा ऐसे गिरा, उनको पता नहीं चला, जो बेजन चमर जो भी था हाथ से ऐसे गिरा, है ना। और फिर क्या हुआ? धड़ाम जमीन में गिर गई जमीन में, मूर्छित हो गई, है ना। फिर भगवान ने जो है उनका जो है मतलब फिर सम्मान किया, फिर उठाया और फिर कहा कि हाँ ये हंसी मजाक है, ये गृहस्थों में हंसी मजाक, इसी में तो गृहस्थों को जो है कुछ सुख मिल पाता है, क्योंकि दिन भर जो है घर के काम काज, बाहर के काम काज, दुनिया भर के जो है झंझट में जो है जो फंसा हुआ आदमी होता है, तो घर में आकर के पत्नी के साथ में थोड़ा हंसी मजाक कर लेता है, तो तुम जो है हंसी मजाक को तुमने क्या समझ लिया? इस तरह से रुक्मिणी जी को जो है फिर ऐसे भी समझाया, है ना। और फिर रुक्मिणी जी ने जो है फिर जब उत्तर दिए तो भगवान ने जो है जो बातें कही थी उनका दूसरा अर्थ निकाल करके उन्होंने अपने दोष बताए और आप भगवान के गुण बताए, तो भगवान प्रसन्न हुए कि आपने ठीक कहा कि मैं आपकी योग्य नहीं हूं, है ना। इस तरह से रुक्मिणी जी की जो उत्तर है वो बहुत, क्योंकि बहुत बुद्धिमती थी, तो उन्होंने भगवान ने अपने जो दोष बताए तो उनको जो है रुक्मिणी ने गुण सिद्ध किए कि आपके गुण हैं ये। तो इस तरह से जो है भगवान प्रत्येक पत्नी का गर्व दूर करते थे, है ना। सत्यभामा को भी अभिमान हुआ, सत्यभामा को वो श्रीमद भागवत तो नहीं मिलता है, नहीं कहीं और जगह मिलता है, सत्यभामा को अभिमान हुआ। क्या हुआ? सत्यभामा ने कहा कि सुना है कि राम अवतार में जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था तो आप इतने पागल हो गए थे सीता के लिए कि आप वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से भी सीता के बारे में पूछ रहे थे, आप इतने पागल हो गए सीता के लिए, तो क्या सीता मेरे से ज्यादा सुंदरी थी? किसने कहा? सत्यभामा ने कहा। सुन रहे महर्षि? हाँ, तो क्या सीता मुझसे ज्यादा सुंदरी थी? तो भगवान ने ऐसे कुछ नहीं कहा, तिरस्कार नहीं किया, पत्नी का तिरस्कार नहीं किया, कहा कि देखो अगर मैं कहूंगा तो तुम मानोगे नहीं मेरी बात। देखो एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो समय भी था, इस समय भी है, ठीक है, तो हनुमान जी थे, ठीक है, तो हनुमान जी को बुलाओ। तो गरुड़ जी को भेजा और सत्यभामा से कहा कि तुम सीता का रूप धारण कर लो, मैं राम का रूप धारण कर लेता हूं। हनुमान जी को बुलाते हैं तो वो जो है विचार करेंगे तो हनुमान जी जो उत्तर दिशा में कदली वन में रहते हैं, तो गरुड़ जी को द्वारका से भेजा उत्तर दिशा में कदली वन में कि हनुमान जी को बुला लो। तो गरुड़ जी गए हनुमान जी को बुलाने के लिए, तो बोले कि आपको जो है द्वारका में भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। तो हनुमान जी क्या बोले? कृष्ण को तो मैं नहीं जानता। हनुमान जी बोले कृष्ण को तो मैं नहीं जानता। तो गरुड़ जी को बड़ा बुरा लगा, आए द्वारका में लौट करके, प्रभु वो कहता है कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। हाँ हाँ ठीक है, तुम बोलो कि द्वारका में श्री राम जी बुला रहे हैं आपको। हाँ, तो फिर गए गरुड़ जी, द्वारका में श्री राम जी बुला रहे हैं आपको, ठीक है चलो आता हूँ। हनुमान जी चलो मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी को भी थोड़ा गर्व था कि हनुमान जी को लेके आएंगे, तो उनको फिर बुरा लगा, चलो मैं आता हूँ, ऐसे बोलता है चलो मैं आता हूँ जैसे मुझसे पहले पहुंच जाएगा। जब गरुड़ जी पहुंचे तो हनुमान जी पहले ही पहुंच चुके थे वहां। अब जब हनुमान जी ने दर्शन किया तो भगवान राम का दर्शन करके तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रणाम की, स्तुति की, सब कुछ किया और बोले प्रभु
आप जैसे थे पहले वैसे ही आपका जो है सब कुछ वैसे ही है, सौंदर्य है, प्रभाव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ तो वैसे ही है, लेकिन माता के स्थान में किस दासी को बिठा लिया है? तो भगवान जो है अपने भक्तों का गर्व दूर करते हैं, तो उनकी उनका तरीका भी कितना मतलब होता है, परिष्कृत होता है, आप समझे ना कितना परिष्कृत होता है, मतलब कभी भी ऐसे उत्तर नहीं दिया कि तुम अपने कितना सुंदर समझती है, ऐसा नहीं कहा भगवान ने, भगवान का नहीं नहीं अगर मैं कहूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी, भाई उस व्यक्ति को पता है। तो कोई बात बुरी ना लगे, है ना। और रुक्मिणी को भी जो है गर्व था अपने रूप का, सौंदर्य का, कि भगवान 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, तो ऐसे कहा, कैसे कहा कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, तुमने गलती की, मुझको जो है पति बनाया, ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी, जीवन में कभी गलती नहीं की तुमने, केवल एक ही गलती की। तो भगवान की जो है मतलब चरित्र ऐसे अद्भुत हैं, ऐसे मधुर चरित्र हैं, इतने कोमल हैं, इतने मधुर हैं, दिव्य हैं भगवान के चरित्र, है ना। और मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भी, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है। राशि में भगवान ने त्याग किया था, हाँ तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से त्याग किया था, राधा रानी को भी जो है जब त्यागा तो कितने अच्छे तरीके से त्यागा, कोई कठोर शब्द नहीं बोले, कठोर शब्द नहीं बोले, लेकिन राधा रानी तिरस्कार कर रहे हैं कृष्ण का है? और कृष्ण सम्मान कर रहे हैं राधा रानी का, है ना। राधा रानी को जो है कृष्ण अपने साथ ले जाना चाहते हैं, देखो गोपियां सब आ गई हैं और वो तुमको ले जाएंगे अपने साथ, तुम मेरे साथ चलो, निकल चलो यहां से। तो राधा रानी को भी गर्व हो गया, मैं तो जो है राजा की पुत्री हूं, मैं तो जो है घर से कभी बाहर निकली नहीं हूं, अब तो मैं थक गई हूं, अब तो मुझे पसीना आ गया है, अब तो मैं चलने में असमर्थ हूं, अब मुझे आप ले चलो। तो भगवान बोले ठीक है, तुम कंधे में बैठ जाओ मेरे, और झुके भगवान, जब बैठे तो भगवान अंतर्धान हो गए, है ना। तो भगवान का जो तरीका है वो ऐसा है कि कभी भी अप्रिय शब्द नहीं बोलते, है ना। तो भगवान के जो चरित्र हैं वो कैसे हैं, अद्वितीय हैं, मतलब वैसा कोई हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मनुष्यों को जो है सिखाने के लिए भी भगवान जो है मतलब ऐसे चरित्र करते हैं कि शिक्षा प्राप्त हो, है ना। राजा जो चित्रकेतु हैं तो उनका जो है मतलब क्या है कि एक कमी जो है वो यही है कि पुत्र में आसक्त हो गए, बहुत ज्यादा पुत्र में आसक्त हो गए, है ना। तो ये गलतियां जो है मतलब होती हैं इस भौतिक संसार में, जीव से गलतियां होती हैं, और अगर वो जो है भगवान को भूल जाता है तो गलती ही गलती करता है कि नहीं। तो राजा चित्र के तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन जब पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र में आसक्त हो गए, भगवान को भूल गए, तो फिर उनसे ये सब गलतियां होने लगी, है ना। अब वो गीता की जो शिक्षा है वो अब वो उनको मिल नहीं सकती है, क्योंकि गीता में भगवान ने जो शिक्षा दी कि मेरा स्मरण करो, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरति चा, है ना, कि मेरा स्मरण करो, आसक्ति मेरे में हो, आसक्ति मुझ में लगाओ अपनी, तो फिर से क्या होगा कि किसी में आसक्ति नहीं होगी, तो समता का व्यवहार होगा, आप समझ रहे। तो समता के व्यवहार फिर क्या होता है कि फिर कोई समस्या नहीं पैदा होती समानता के व्यवहार में, फिर जो भी स्नेह होता है बराबर बढ़ जाता है, बराबर बराबर बढ़ जाता है, चाहे थोड़ा सा स्नेह हो लेकिन उस समय बराबर बढ़ जाता है, तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन समस्या क्या होती है कि भगवान के प्रति जो स्नेह है वो भी हट करके बच्चे में आ गया है, और पत्नियों के प्रति भी जो स्नेह था वो भी हट करके बच्चे में आ गया, और बच्चे में स्नेह था और पत्नी जो बच्चे की माता है उसमें स्नेह हो गया, तो यहां पर समस्या हो गई कि जब एक पत्नी में जो है स्नेह बहुत ज्यादा बढ़ गया पुत्र के कारण, तो फिर उन्होंने क्या माना कि जो 99,99,999 स्त्रियां हैं उन्होंने अपने कष्ट का कारण फिर किसको माना, पुत्र को, पुत्र को, एक पुत्र जो है यही हमारे कष्ट का कारण है। फिर राजा का स्नेह, पति का स्नेह पुत्र में केंद्रित हो गया है और पुत्र के कारण पुत्र की माता में हो गया है ना। तो फिर आगे चल करके फिर क्या हो, क्या करते हैं वो, मिलकर के जहर दे देती हैं, मिलकर के जहर दे देती हैं, ये जो है और बच्चा फिर मर जाता है। तो कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है, कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि बच्चा मर जाता है ना। लेकिन कुछ कर्म पिछले जन्म का है इसमें, इसमें तो नहीं बताया गया पिछले जन्म का कुछ कर्म है, नहीं कहीं पर मैंने पढ़ा या सुना है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि वो मतलब ये जो बच्चा था वो जंगल में कोई साधु रहा या कोई व्यक्ति रहा होगा और एक कंडा था, गोबर का कंडा, समझते ना, गोबर का कंडा बोलते हैं कंडा, तो कंडा में जो है चींटियां थी बहुत सी, तो उसने देखा भी कितनी चींटियां हैं, अब जिस कारण से हो उसने जलाया कंडे को जलाया, अब वो चींटियां उतनी रही होंगी, कितनी रही होंगी, 99,99,999, तो उसने जो है उस कंडे को जला दिया। तो अब वही जो है चींटियां आगे चल करके ये बनी, उसकी माताएं बनी और मिल करके उस एक बच्चे को जहर दिया। तो ऐसा भी मतलब हो सकता है, अब समझे, कर्म जो है इस प्रकार से भी होता है किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा, क्योंकि विषय बहुत रोचक है। हाँ जी, आपका प्रश्न, हैंडबैग नहीं, हैंडबैग
तो जो इसके अनुवाद में ही था कि धिक्कार के योग्य, जो धिक कर ऐसा कर दे, तो वैष्णव समाज में जो इस चीज को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि महान समाज में जो है जो कि धिक्कार, जो व्यक्ति धिक्कार के योग्य होता है उसको धिक्कारा जाता है, धिक्कार करने योग्य नहीं भी होता तो भी धिक्कारा जाता है, तो धिक्कारा जाता ही, परंतु वैष्णव समाज में जो है सदाचार के मतलब अनुसार धिक्कारे जो चीज धिक्कार के योग्य है हम आमतौर पर धिक्कारते नहीं है, और कई कबार जो है ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सेवा किसी की होती है, कोई ऐसी जिम्मेदारी किसी की होती है जिसके अंतर्गत जो है उसको धिक्कारने की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
पहली बात तो ये है, हो सकता है आपका प्रश्न पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि धिक्कारा, प्रभुपाद ने धिक्कारा लोगों को, और वैष्णव समाज में भी जो है कुछ लोगों को धिक्कारा प्रभुपाद ने, वैष्णव की वेशभूषा धारण करके अगर दुराचार करें, और अप संप्रदाय हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको धिक्कारा कि ये अप संप्रदाय हैं, वैष्णवों को कलंकित करते हैं, सहजियां हैं उनको धिक्कारा। गीता में भगवान कहते हैं अपिचित दुराचारों भजते माम आनंद भाव, दुराचारी है मेरा आनंद भजन करता है तो साधु माना जाएगा, तो भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति वह भजन करता है कृष्ण का उसमें दुराचार करे तो धिक्कार है ना, तो यहां भगवान साधु बताते हैं वो है धिक्कार की योग, आप समझ में। तो इस तरह से जो है मतलब कई मामलों में धिक्कारा जाता है, कोई भक्त जो है अगर कुछ गलती करता है जो निंदा करने योग्य है, निंदनीय है, तो उसकी निंदा करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए, जिससे कि और लोग ना करें ऐसी गलती, तो निंदा कभी जो है एक विषय होता है, और सबके सामने भी किसी कार्य की निंदा अगर की जाती है तो वो जरूरी है। कभी कभी हम लोग बोलते भी निंदा नहीं करना है, दोष नहीं देखना है, लेकिन उससे फिर पता है क्या होगा, एक व्यक्ति गलती करता है दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, सब लोग करेंगे, इसलिए सबके सामने निंदा करनी चाहिए, ये कार्य जो है मतलब गलत है, तो ये जरूरी है कि वैष्णवों के समाज में निंदा की जाए और किसी व्यक्ति को धिक्कारा जाए। अगर उसने गलती की है और आगे से गलती नहीं करेगा तो उस कार्य की निंदा करनी चाहिए, उस व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसने तो गलती मान ली, अगर वो फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहा है, आगे से भी गलती करने के लिए तैयार है, तो उसकी भी निंदा करनी चाहिए, आप समझ रहे। हाँ,
यही ऐसे ही यही था मेरा, और इसमें थोड़ा सा बस जैसे इतना जोड़ना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि अगर हम निंदा नहीं करते हैं तो माहौल खराब होता है उससे, तो इसलिए जो मतलब जो निंदा करे तो उस जो इस माहौल को सुधार के रखने की जिसकी जिम्मेदारी हो तो किसको निंदा करनी चाहिए, मतलब क्या हर कोई निंदा करने के लिए।
हाँ, वास्तव में तो सबसे पहला जो गुण है वैष्णव का वो ये है कि वो ईर्ष्या ना करे, क्योंकि कई बार तो हम ईर्ष्या के कारण ही निंदा करते हैं, और केवल दोष ही निकालते हैं और गुण देखते नहीं हैं। लेकिन अगर हम गुणों को देखते हुए फिर अगर कुछ बताते हैं कि आप में ये कमी है और ये जो है सुधरना चाहिए, तो वो तो अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर जो है केवल दोष ही निकालना है, दोष निकालने की भावना से अगर निंदा करते हैं, वो ठीक नहीं है, है ना। इसलिए हर व्यक्ति को अधिकार भी नहीं है निंदा करने का। लेकिन हाँ, मीटिंग में जो है ये बात उठाई जा सकती है कि इस विषय में आप प्रकाश डालिए, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। ठीक है, और भी आपका प्रश्न है? हाँ,
मेरे दो सवाल थे, दो सवाल थे,
दो सवाल, एक प्रश्न करोगे, हो सकता हो कोई और प्रश्न करे। ठीक है, आप एक प्रश्न करेंगे।
इसमें एक तो कोई जैसे आपने एक ये कथा बताई, जैसे माना चित्रकृति का बेटा था हर्ष को, उसको जो है सब रानियों ने मिलकर जहर दिया।
जोर से बोलो, सबको सुनाए।
सब रानियों ने मिलकर जहर दिया। तो कभी कभी लोग ये सवाल उठते हैं कि जैसे कोई हम लोग एक एक कोई क्रिया देखते हैं, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या की, तो वो बोलते हैं कि इसके पीछे क्या कारण था, या तो उस व्यक्ति का कर्म था इससे उसकी हत्या हो रही है, या दूसरा अपना कर्म बना रहा उसकी हत्या करके, या ये
देखिए ऐसा है।
तो कैसे समझा जाता
है? ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है ना, तो पहली बात तो ये भी सच है कि उसका कर्म था। आप सुन रहे, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की तो उसका कर्म था कि उसकी हत्या होनी थी। ठीक है, लेकिन अब जिसने हत्या की, अगर वो उसको अधिकार नहीं था हत्या करने का, उसने हत्या की तो उसने नया कर्म भी बना लिया अपना। आप समझ रहे हैं? अगर उसको अधिकार, जैसे अर्जुन को जो है हत्या करने का अधिकार है, उनको दोष नहीं लगेगा कि ऐसी स्थिति में हत्या की जा सकती है, तो वो अलग बात है। तो वो स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कैसी स्थिति में हत्या करते हैं। अगर उचित कारण है हत्या करने का, तो हत्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मेरी हत्या करने के लिए आ रहा है, तो मैं उसकी हत्या कर दूं तो मुझे दोष नहीं लगेगा। आप समझ रहे हैं? और अगर मैं वैसे हत्या करता हूं बिना किसी कारण के, तो मुझे हत्या का पाप नहीं लगेगा। नहीं, ठीक है। और कोई प्रश्न है? हाँ, आपका प्रश्न। माइक है, माइक।
आपने जैसे बताया कि वो चींटियां थी पिछले जन्म में, तो उन्होंने इसी कारणवश उसके पुत्र की हत्या के लिए, तो क्या वो पिछले जन्म में जैसे वो चींटियां बन के मारी गई थी, तो उनको अधिकार प्राप्त हो गया जन्म में उसको मारने का?
नहीं, अधिकार नहीं प्राप्त हुआ इस जन्म में, उनको मारने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। फिर आगे चलकर की कथा में आता है, आगे चलकर के कथा में आता है कि अंगिरा और नारद मुनि आए और उनसे फिर प्रायश्चित कराया, उन पत्नियों से प्रायश्चित कराया। ठीक है ना, कुछ कारण तो ऐसे बन गए थे कि वो मतलब ईर्ष्या पैदा हो गई, लेकिन कभी तो हत्या तो नहीं कर सकती आप ही ना। तो इसलिए वो जो कुछ भी हत्या का दोष उनको लगा था, उसका उन्होंने उन पत्नियों से प्रायश्चित करवाया। ठीक है ना, और कोई प्रश्न? आपका
कृष्णा, तो कितनी पुण्य करने के बाद व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, तो राजा चित्रकेतु के कौन से अपराध थे या पाप थे कि उनको एक करोड़ शादी करने के बाद भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ?
एक करोड़ विवाह करने के बाद भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, इस भौतिक संसार में जो कर्म होते हैं, तो उनमें जो है मतलब कई प्रकार से दोष बन जाते हैं, आप नहीं चाहते तो भी दोष बन जाते हैं। अब क्या दोष था ये तो नहीं बताया गया क्या दोष था, लेकिन एक घटना बताई जाती है। भगवान राम के पहले उनके पिता दशरथ थे, दशरथ के पुत्र, दशरथ के पिता अज थे, अज के पिता थे रघु, उनके पिता दिलीप, इस तरह से थे ना। तो राजा दिलीप जो है स्वर्ग में गए थे किसी कार्य से, बस स्वर्ग में गए थे, मतलब इतनी शक्ति होती थी कि अपने इसी शरीर से स्वर्ग में आते जाते रहते थे। तो स्वर्ग में गए थे किसी कार्यवश, जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में कामधेनु मिली, कामधेनु स्वर्ग की है ना गाय है, तो उसको उन्होंने मतलब प्रणाम नहीं किया, उसको उन्होंने प्रणाम नहीं किया और वो जो है वहां से निकल गए। तो कामधेनु ने साथ दिया उनको कि उनको पुत्र नहीं हो रहा है, तो उनको पुत्र नहीं हुआ। अब जब पुत्र नहीं हो रहा है तो बहुत चिंतित हो गए। वशिष्ठ जी जो है उनको पुरोहित थे, तो वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या कारण है, तो वशिष्ठ जी ने फिर ध्यान किया तो उनको समझ में आ गया कि कामधेनु ने जो है आपको साथ दिया है पुत्र ना होने का, क्योंकि आपने कामधेनु को सम्मान नहीं दिया। तो अब क्या किया जाए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय मेरे आश्रम में है, आप इसकी सेवा करो तो इसकी प्रसन्नता से फिर आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो उन्होंने फिर उसकी सेवा की तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो ऐसे कई कारण बन जाते हैं और छोटे छोटे अपराध में भी जो है बड़ा बड़ा दंड भोगना पड़ता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आपका अच्छा पहले भी कोई हो, आपका दूसरा प्रश्न है? हाँ जी।
तो और दूसरा प्रश्न ये था भाई, जैसे आपने बताया था कि वो रानियां जो है वो अपने आप को दोष दे रही थी,
रानियां
धिक्कार है हमारे ऊपर कि हम पापी हैं।
जोर से बोलो ना, आपकी आवाज सबको नहीं सुनाई पड़ रही।
कि धिक्कार है हमें, जैसे अब आप बता रहे थे कि हम लोगों ने शायद पाप में जीवन व्यतीत किया तो हमें पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई, तो ये जो धिक्कारना था ये तो एक तरह से झूठा दिखाई देता है, क्योंकि फिर उसके बाद उन्होंने ही उस बच्चे को जहर खिलाया।
हाँ, तो आपको लगता है कि भाई फिर क्यों ऐसा किया है ना? इनका प्रश्न अच्छा है कि अभी तो धिक्कार रही है, ये फिर क्या हुआ? तो बात यह है कि चूंकि वो धिक्कारती रही और राजा के पास अब समय भी नहीं था कि उनको कुछ आगे उपदेश दें, ज्ञान दें है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। राजा जो है मतलब गुरु भी है, तो उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं था। जैसे अर्जुन शोक में मग्न थे तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो इस प्रकार से राजा कोई उसको उनको मार्गदर्शन मिला नहीं, आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला नहीं। तो पति में तो उन्होंने दोष नहीं निकाला, लेकिन फिर जितना दोष है फिर उन्होंने पुत्र में निकाल लिया। तो वो जो ज्ञान है वो ढक गया ना, ईर्ष्या के कारण फिर ज्ञान ढक गया। काम आवृतम ज्ञानम, काम के द्वारा ज्ञान ढक गया, पुत्र की कामना का ज्वर पैदा हो गया, तो उस कामना ने ज्ञान को ढक दिया, तो ना चाहते ही व्यक्ति पाप कर बैठता है। अर्जुन ने प्रश्न किया ना कि व्यक्ति ना चाहते ही पाप क्यों कर बैठता है, तो जानते हैं वो पाप है क्यों किया। तो वो काम जो है, जो कामना है, पुत्र की कामना है, सम्मान की कामना है, तो उससे फिर क्या हुआ, ये जो है ज्ञान ढक गया और ऐसी गलती होती है। ठीक है ना, आपका प्रश्न है।
हरे कृष्ण, जैसे आपने शुरुआत में मुझे उक्ति की थी कि पक्षपात जो है अपने आप में एक दोष है, तो पक्षपात हालांकि दोष है, पर जब हम लोग इस तरीके से सेवा करते हैं या किसी चीज के बीच में जो है तारतम्य भेद हमें करना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे स्थिति में जो है वो कैसे दोष मना?
वो भी सही है, क्योंकि वहां पर समता में दोष होता है, फिर आप सम्मान नहीं हो सकते, क्योंकि जो जिस योग्य है यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, इसलिए कहा है भाई सत्कार करो, सत्कार तो यथा योग्य सत्कार करो, जो जितना योग्य है उसका उतना सत्कार होना चाहिए। और किसका पहले, तो यहाँ जो है रोज जैसे आरती भी दिखाते हैं तो देखा जाता है भाई कौन सीनियर उसको दिखाएं, तो ये सब तारतम्य है। तो ऐसे में ये नहीं कि भाई समता होना चाहिए, तो समता में दोष है। ठीक है ना, धन्यवाद। आपका प्रश्न, आखिरी प्रश्न, हिंदी नहीं बोलते क्या कुछ? बंद कर दिया क्या?
महाराज, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल क्लास। ओके महाराज, व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट ट्राइंग टू सर्व द डिवोटीज, हाउ डू यू बैलेंस दिस थिंग अबाउट trying to convey that somebody else is not right?
आप बता सकते हैं क्या प्रश्न था?
गलत रोजी जो इस कॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, रोजी कहते हैं कि जिससे ऑफिशियल एनवायरमेंट होता है भक्तों के बीच में काम करते हैं भक्त जो है, तो उसमें कैसे बताते हैं, कैसे बताया जाए कि भक्तों की आप गलत हो और उसका दोष ना लो?
हाँ, कैसे बताया जाए कि आप गलत हैं? हाँ, इसमें एक शिष्टाचार है, शिष्टाचार की विधि है। अगर आपको दिखाई देता है कोई भक्त अपने से सीनियर है और उसने गलती की है, तो शिष्टाचार के नाते आप उनसे पूछ सकते हैं कि प्रभु जी आपने ऐसा किया, ये तो मुझे गलत मालूम पड़ रहा है, आप बताइए कहां तक सही है। आप समझे, तो उसी भक्त से आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने जो कार्य किया है, ऐसा काम किया है, ये तो जो है ठीक नहीं मालूम पड़ रहा है, मुझे तो ठीक नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन आप बताइए कि कहाँ तक ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया। तो ये तरीका होता है, ठीक है। अगर फिर भी वो ईर्ष्यालु है और वो बात को काट रहा है, बात को ढक रहा है, घुमा रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि वो नहीं आपकी बात को सुन रहा है, आपकी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर और जो दूसरे भक्त हैं उनके साथ में आप फिर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। निरंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधिका रमण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्री श्री गौरनाथ भगवान की जय। हो हरे कृष्ण।